ध्वनिर्वर्ण पदम वाक्य मिथ्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। एमे संस्कृत द्वितीय सत्र, विषय ध्वन्यालोक। मित्रों, आज हम ध्वन्यालोक विषय पर यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जिस विषय के लिए यहाँ आज उपस्थापन होना है वह ध्वन्यालोक किस विधा के अंतर्गत आता है, पहले उसका हमें जानना परम आवश्यक हो जाता है। तो यह ध्वन्यालोक विषय काव्यशास्त्र के अंतर्गत है। काव्यशास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है ध्वन्यालोक। उस काव्यशास्त्र की अपनी एक परंपरा रही है, उस काव्यशास्त्र का अपना एक इतिहास है। तो वह काव्यशास्त्र का उद्गम क्या है, पहले यह जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। वह जानने के बाद ही हम इस विषय में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम आप काव्यशास्त्र का उद्गम ध्यान से समझें। काव्यशास्त्र का उद्गम संस्कृत साहित्य वाङ्मय में काव्यशास्त्र के क्षेत्र में आचार्य भरत मुनि को काव्यशास्त्र का पितामह इस नाम से ख्याति प्राप्त है। उन्होंने काव्यशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तथा उपयुक्त दिशा साहित्य जगत को प्रदान की है। सुदीर्घ प्राचीन काल से भारत भू पर कविता की धारा प्रवाहित होती चली आ रही है। कविता की धारा के प्रवाह के साथ ही कविता के तत्वों पर भी विचार किया जाता रहा होगा और उसी विचार को काव्यशास्त्र का बीज माना जा सकता है। परंतु काव्यशास्त्र का प्रारंभ ठीक कब से हुआ यह कहना कठिन है। काव्यशास्त्र के उद्गम के विषय में कोई निश्चित तथ्य प्राप्त नहीं होते हैं। राजशेखर ने काव्य मीमांसा के प्रारंभ में एक घटना दी है जिसमें पौराणिक ढंग से काव्यशास्त्र का उद्गम दैवी माना गया है। भारतीय आस्तिक दृष्टिकोण के अनुसार वेद सभी धाराओं के, सभी विद्याओं के मूल स्रोत हैं। इसलिए काव्यशास्त्र के बीज को भी वेदों में खोजने की कोशिश की जाती है। वेदांगों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को स्थान प्राप्त है। यद्यपि अनेक स्थलों पर रूपक, उपमा आदि का प्रयोग वेदों में मिलता है। वेदोपनिषदों में आलंकारिक प्रयोगों को देखकर लोगों में उनके विवेचन की शास्त्रीय जिज्ञासा उत्पन्न हो गई होगी। निरुक्त एवं व्याकरण को जो वेदांग भी माने गए हैं, इनमें भी उपमा का पर्याप्त प्रयोग हुआ है। यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि से वे चमत्कारहीन होने के कारण उपमा अलंकार की कोटि में नहीं आते हैं, तथापि उनमें शास्त्रीयता की झलक मिलती है जो आगे चलकर औपम्य मूलक अलंकारों के विस्तार का कारण बनी है। काव्यशास्त्र में ध्वनि कल्पना तो निश्चित रूप से वैयाकरणों के स्फोटवाद से ग्रहित है। इस प्रसंग में आचार्य मम्मट तो स्पष्ट रूप से लिखते हैं, बुधई ही वैयाकरणई ही प्रधान भूत व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः तन्मतानुसारिभिरन्यरपि न्यग्भावितवाच्यवाचकस्य शब्दार्थयुगलस्य। इस आधार पर काव्यशास्त्र के बीज को निरुक्त, व्याकरण, वेदांगों में मानने का पर्याप्त कारण है। फिर भी उसकी शास्त्रीयता के दर्शन हमें सर्वप्रथम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के काव्यशास्त्रीय प्रसंगों में ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के तथ्यों को देखकर ही काव्यशास्त्र की प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है तथा प्राचीन काल से ही समालोचकों ने काव्यशास्त्र पर समालोचनाएं की हैं। अतः वैदिक काल ही काव्यशास्त्र का उद्भव काल माना जाता है। वैदिक काल से लेकर आज तक क्रमशः अलंकार शास्त्र का विकास समय की गति के अनुसार प्रगति के पथ पर बढ़ता हुआ चला आ रहा है। इस दीर्घमत काल का विभाजन रचना के आधार पर चार भागों में किया जा सकता है। प्रथम काल वैदिक काल से आचार्य भामह तक का, द्वितीय काल आचार्य भामह से आचार्य आनंदवर्धन तक का, तृतीय काल आचार्य आनंदवर्धन से आचार्य मम्मट तक का, और चतुर्थ काल आचार्य मम्मट से आचार्य पंडितराज जगन्नाथ तक का। मित्रों, अब यहाँ रचनात्मक दृष्टि से इन चारों कालों को समझना परम आवश्यक हो जाता है। सर्वप्रथम हम प्रथम काल की चर्चा करते हैं। प्रथम काल वैदिक काल से लेकर आचार्य भामह तक अर्थात सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक प्रथम काल माना जाता है। इस काल में मुख्य रूप से दो आचार्यों के नाम ग्रहण किए जाते हैं, पहला आचार्य भरत मुनि का और द्वितीय आचार्य भामह का। आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में नाट्य के सूक्ष्म तत्वों का विवेचन किया गया है। तथापि नाट्यशास्त्र एक बीजभूत ही है, अर्थात भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का विस्तृत विवेचन परवर्ती आचार्यों ने किया है। नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में केवल 4 अलंकार, 10 गुण तथा 10 दोषों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। यह विवेचन एक रूपरेखा मात्र ही है। भरत मुनि के अनंतर आचार्य रुद्रट आदि अनेक आचार्यों ने नाट्यशास्त्र की व्याख्याएं की हैं। वस्तुतः आचार्य भरत मुनि के बाद आचार्य भामह ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना करके अलंकार शास्त्र का स्वरूप स्पष्ट किया है। आचार्य भामह ने भरत मुनि के द्वारा स्वीकृत 4 अलंकारों के स्थान पर 38 अलंकारों का निरूपण किया है। भट्टी नामक महाकवि ने भट्टी काव्य की भामह के द्वारा निरूपित 38 अलंकारों के आधार पर रचना की है। द्वितीय काल में अलंकार शास्त्र का महत्वपूर्ण काल रचनात्मक काल माना जाता है। यह काल 650 ईस्वी से 850 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल को रचनात्मक इसीलिए कहते हैं कि इस काल में मुख्य साहित्य के 4 संप्रदायों की रचना हुई। प्रथम अलंकार संप्रदाय, द्वितीय रीति संप्रदाय, तृतीय रस संप्रदाय और चतुर्थ ध्वनि संप्रदाय। इन 4 संप्रदायों के निर्माताओं का जन्म भी इसी काल में हुआ। इन आचार्यों के नाम, अलंकार संप्रदाय के आचार्य आचार्य भामह, आचार्य उद्भट और आचार्य रुद्रट हैं। रीति संप्रदाय के आचार्य आचार्य दंडी हैं तथा आचार्य वामन हैं। रस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य आचार्य लोल्लट, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक हैं। और ध्वनि संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं आचार्य आनंदवर्धन। साहित्यिक दृष्टि से यह काल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस काल में काव्यशास्त्र के सभी सिद्धांतों का पर्याप्त विवेचन हुआ। आचार्य भामह, रुद्रट, उद्भट आदि ने अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया है तथा आचार्य दंडी और आचार्य वामन ने काव्य की रीति और काव्य के गुणों का विशद निरूपण किया है। काव्य की आत्मा रस को दृढ़ता के साथ प्रतिपादित करते हुए आचार्य लोल्लट, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक ने भरत मुनि के रस सूत्र की विस्तृत व्याख्या की है। और इसी काल में आनंदवर्धनाचार्य ने जन्म ग्रहण करके ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ रत्न की रचना करके ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है। तृतीय काल आनंदवर्धनाचार्य से मम्मट तक का समय अति महत्वपूर्ण है, जो साहित्य शास्त्र का निर्णयात्मक काल माना जाता है। यह समय 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक का काल माना जाता है। इस काल के मुख्य आचार्यों के नाम आचार्य अभिनव गुप्त हैं, वक्रोक्ति जीवितकार आचार्य कुंतक हैं और व्यक्ति विवेककार आचार्य महिम भट्ट हैं। आचार्य कुंतक ने इन चार संप्रदायों के अतिरिक्त पांचवा वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना इसी काल के अंतर्गत की तथा ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी आचार्य महिम भट्ट हैं। आचार्य महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक नामक ग्रंथ ध्वनि सिद्धांत का खंडन करने वाला अति प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त इसी काल में आचार्य रुद्र भट्ट, भोजराज, धनिक, धनंजय आदि आचार्यों ने अलंकार शास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन किया है। अतः निःसंदेह यह निर्णयात्मक काल साहित्य शास्त्र का महत्वपूर्ण काल है। चतुर्थ काल आचार्य मम्मट से लेकर आचार्य पंडित राज जगन्नाथ तक का समय साहित्य शास्त्र का व्याख्या काल माना जाता है। इस काल में अनेकों आचार्यों ने जन्म ग्रहण किया है, जिनमें हेमचंद्र, विश्वनाथ तथा जयदेव आदि ने साहित्य का सर्वांगीण विवेचन किया है तथा महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है। रुय्यक तथा अप्पय्य दीक्षित आदि ने केवल अलंकारों का ही विस्तृत विवेचन किया है। आचार्य शारदातनय, सिंहभूपाल एवं भानुदत्त आदि विद्वानों ने साहित्य शास्त्र के विवेचन में प्रशंसनीय कार्य किया है। आचार्य राजशेखर, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य अमरचंद आदि ने कवि शिक्षा के विषय पर ग्रंथों की रचना की है। इस काव्य शास्त्र के जो प्रमुख सिद्धांत हैं, उन प्रमुख सिद्धांतों में प्रमुख संप्रदायों में एक प्रमुख सिद्धांत संप्रदाय है औचित्य संप्रदाय। उस औचित्य संप्रदाय की स्थापना भी इसी चतुर्थ काल के अंतर्गत कही गई है। इस काल के आचार्यों का वर्गीकरण इन समस्त काल जिन चार कालों का यहाँ विभाजन किया गया है उनके आचार्यों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। ध्वनि संप्रदाय के अंतर्गत आचार्य मम्मट, आचार्य रुय्यक, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य हेमचंद्र, आचार्य विद्याधर, आचार्य जयदेव तथा आचार्य अप्पय्य दीक्षित आदि को स्वीकार किया जाता है। कवि शिक्षा के अंतर्गत आचार्य राजशेखर, क्षेमेंद्र, अरिसिंह अमरचंद्र, देवेश्वर आदि आचार्यों का वर्गीकरण कवि शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। रस संप्रदाय के अंतर्गत आचार्य शारदातनय, सिंहभूपाल, भानुदत्त, रूप गोस्वामी आदि को रस संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य विश्वेश्वर भट्ट आदि को इस युग के अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार साहित्य शास्त्र के इतिहास का विभाजन चार भागों में किया गया है। कुछ विद्वानों ने साहित्य शास्त्र के इतिहास को तीन भागों में विभक्त किया है। जैसे अभी हमने देखा कि काव्य शास्त्र के जो चार भागों में, अभी आपने देखा कि साहित्य शास्त्र का इतिहास चार भागों में विभक्त किया गया है। वहीं कुछ आचार्य हैं जिन्होंने ध्वनि काल को लेकर के तीन भागों में इनको विभाजित किया है। पहला भाग है ध्वनि काल से पूर्व का समय, अर्थात वैदिक काल से आचार्य आनंदवर्धन तक का समय। द्वितीय भाग है ध्वनि काल, जो आचार्य आनंदवर्धन अर्थात 850 ईस्वी से आचार्य मम्मट तक का 1050 ईस्वी तक का समय है। तृतीय भाग है ध्वनि काल के बाद का समय, अर्थात आचार्य मम्मट 1050 ईस्वी से लेकर के पंडित राज जगन्नाथ तक का समय 1800 ईस्वी तक का समय। तो यह ध्वनि काल को लेकर के तीन भागों में विभक्त किया गया है, वहीं कुछ आचार्यों ने चार में विभाजन किया है। इस प्रकार आपने इस काव्य शास्त्र के उद्गम की परंपरा को यहाँ समझने का प्रयत्न किया। अगली जो श्रृंखला होगी, उस अगली श्रृंखला में आप काव्य शास्त्र के जो प्रमुख सिद्धांत कहे गए हैं, जिनका भी बीच में नामोल्लेख भी किया गया, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति, औचित्य, ध्वनि इत्यादि छह मुख्य संप्रदाय हैं जिनका कि विवेचन करना आवश्यक हो जाता है। इनका एक विवेचन करने के बाद फिर अग्रिम क्रम में फिर हम प्रवेश करेंगे ध्वन्यालोक की ओर। तो अगली श्रृंखला में हम पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।